मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 3 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं अपने उन 3 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं अंकित राज मुंबई से, राजपाल चेन्नई से और शुभम कुमार हाजीपुर बिहार से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं प्री एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें करूंगा, जो एग्जामिनेशन आप कल देकर आए हैं। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सच्चाई तो यह है कि रेडियो न्यूज और दूरदर्शन न्यूज या दूसरे चैनल्स पर ऐसी कोई विशेष खबर दिखाई नहीं दे रही है कि उसे आधार बनाकर हम उस पर चर्चा कर सकें। लेकिन हाँ, अखबारों में जरूर कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसका शीर्षक है मोदी जी अब की बार सूट बूट की सरकार। जनरली होता क्या है कि जब हम टाइटल पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा गया है उसका एकदम सही अनुमान नहीं लगा पाते। अब जैसे इस टाइटल को आप पढ़ेंगे तो आप इसे किनारे कर सकते हैं, लेकिन जब आप अंदर पढ़ने लगेंगे तो लगेगा कि अरे इसमें तो आपके बहुत काम की चीज है। तो एक पहली तो सलाह मैं आपको दूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं और अगर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का कोई लेख छपा हुआ है, बहुत अच्छे राइटर हैं वो, लेकिन उसका टाइटल कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आपके काम का नहीं है, फिर भी मेरी सलाह है कि थोड़ा सा अंदर एक नजर मार लीजिए, शायद चीजें आपके काम की निकल आएं। इसमें जो एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और सच पूछे हालांकि कोई नई बात नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए, वो ये है कि अब चूंकि मोदी जी की सरकार आ गई है और ये सेकेंड टर्म है तो उन्हें अपने नीतियों में कुछ बहुत ही जबरदस्त बदलाव करने चाहिए, क्रांतिकारी बदलाव। और इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है और वो भारतीय संदर्भ में बांटा है, वो बात मुझे अच्छी लगी। जैसे उन्होंने कहा कि मोदी जी के जो पहले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने एक तरीके से समाज कल्याण वाली चीजों को ज्यादा तरजीह दी है ना, स्वच्छता अभियान हो गया या उज्ज्वला योजना है या किसानों को सम्मान निधि देना, इस तरह की चीजों पर उनका ज्यादा जोर रहा ताकि लोगों को उसका सीधे लाभ मिल सके। लेकिन देखिए, इस तरह से अर्थव्यवस्था तो मजबूत नहीं होती है क्योंकि इन सब का जो पैसा है वो सरकार को देना है, यानी कि राजकोषीय दबाव बढ़ेगा, बहुत लंबे समय तक आप नहीं चला सकते। और अगर हमको ये चलाना भी है तो सरकार के पास धन होना चाहिए, तो वो धन आएगा कहां से? तो धन तो केवल आर्थिक वृद्धि से आ सकता है, हम अपनी आर्थिक गति को तेज करें, जिसे आप जीडीपी कहते हैं। भारत अभी 6-7% की जीडीपी ग्रोथ दिखा रहा है और सच पूछे तो अब ये माने जाने लगा है कि ये दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन भारत के सामने जो आर्थिक समस्याएं हैं इस गति से उन समस्याओं का निदान नहीं हो सकता, तो भारत को अपनी वृद्धि दर 9-10% तक ले जानी होगी, तो ऐसा कैसे संभव है? इसमें उन्होंने बताया है कि खासकर 1970 के बाद जो भारत ने नीतियां अपनाई थी उसमें उसने जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको हतोत्साहित किया था, सरकार को लगता था कि वो खुद सब कुछ करे। यहां तक कि मोदी जी का जो फर्स्ट टर्म है उसमें भी उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को उतनी तरजीह नहीं दी। इस आर्टिकल को आप पूरा पढ़िएगा तब मेरी बात आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं तो जो आपको बात कह रहा हूं सिर्फ ये बताने के लिए, आप किसी आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कैसे एक पॉइंट पर आपका फोकस होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके तो हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो जाएगी, और इसके लिए इन्होंने बाकायदे चीन के उदाहरण भी दिए हैं कि चीन ने ऐसा ही किया। और सोचिए कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री होने के बावजूद उसने ऐसा किया। हम तो कम से कम साम्यवादी राष्ट्र नहीं है, समाजवादी भले ही हो लेकिन साम्यवादी और समाजवादी में बहुत फर्क है। तो इस तरह से यह आपकी दृष्टि बहुत स्पष्ट करेगा इस इश्यू पर, और यह बहुत ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत मामला है। जो दूसरा एक एडिटोरियल कमेंट है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमिक टाइम्स का है, इसमें इन्होंने एक्सक्लूसिव ग्रोथ की जो बात कही है उसे उन्होंने नाम दिया है ग्रीन इंक्लूसिव ग्रोथ। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा एडिटोरियल कमेंट है इकोनॉमिक टाइम्स का, इसमें इन्होंने इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही है और इंक्लूसिव ग्रोथ को उन्होंने ग्रीन इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़ करके देखा है। उनका कहना है कि अगर हमें सही मायने में समावेशी विकास चाहिए तो हमें तीन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। पहला तो यह है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कम करें, दूसरा है कि बायोडायवर्सिटी जैव विविधता को बनाकर रखें, और जो हम पर्यावरण का विनाश कर रहे हैं इसको रोकें। और इसके लिए फिर उन्होंने आगे कुछ उपाय बताए हैं। तो ये जो ग्रीन इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, आज के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही छोटा सा एडिटोरियल कमेंट है, इसे आप एक बार जरूर देखिएगा। जनसत्ता में एक आर्टिकल है दोस्तों पी चिदंबरम जी का, इसमें उन्होंने एक अलग तरह की बात कही है। उनका यह कहना है कि हम जो भी नीतियां बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जो अफसर जिनके जो बाहर दौरे पर जाते हैं, तो सबसे बड़ा संकट यह है कि देश का जो सबसे निम्न गरीब वर्ग का के लोग हैं, जो लगभग लगभग 20% हैं, उन तक सही मायने में हमारी पहुंच नहीं हो पाती है, तो उनके लिए हम उस तरह से कुछ कर भी नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जैसे अभी किसान प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा हुई है, तो उसमें ठीक है जमीन कितनी हो इसके उसको हटा दिया गया है, लेकिन वो किसानों के लिए किसान निधि है वो। और उनका ये कहना है चिदंबरम साहब का कि हमारे यहां बहुत से कृषि मजदूर हैं, बहुत से कृषक खेतिहर मजदूर हैं, उनका क्या, जबकि सबसे ज्यादा संकट से ग्रस्त ये वर्ग है, इस वर्ग के लिए हम स्पेशली कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके लिए अलग से किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रश्न इन्होंने इस आर्टिकल में उठाया है और मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल को भी आप ध्यान से पढ़ें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह प्री एग्जामिनेशन को लेकर। कल आपके प्री एग्जामिनेशन हो चुके हैं, सबने दोस्तों अपने अपने ढंग से तैयारियां की थी, और आप सबने और अपने अपने ढंग से आप एग्जाम देकर भी आ गए हैं, और एग्जाम देकर आने के बाद आप सब अपने अपने ढंग से अपना अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। कुछ लोगों को तो बहुत स्पष्ट रूप से लग रहा होगा कि हमारे पेपर्स अच्छे नहीं बने हैं तो सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है। दूसरे कुछ लोग ऐसे बिल्कुल बीच में होंगे कि हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, और डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि उनका सिलेक्शन तो हो ही रहा है। मैं सबको मिलाकर के एक दो बातें कहना चाहूंगा। पहले तो देखिए यह है कि यदि आपके पेपर खराब बने हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता है, या यूं कह लीजिए कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और अंततः परिणाम आते हैं कि नहीं हुआ, तो मान करके चलिए कि निराश होने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आपने सिविल सर्वेंट बनने का फैसला किया है और इस एग्जामिनेशन के थ्रू, तो आप मान करके चलिए कि आप आम का बगीचा लगा रहे हैं। आम का बगीचा यानी कि ये लंबे वक्त की मांग करता है, राइट? आप एग्जाम देकर के आए, आपने तैयारी की और आप ईमानदारी से एग्जाम देकर के आ गए, तो आपको पहला काम यह आज करना ही चाहिए, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, कि आप अपना एक मूल्यांकन करें, एक रिपोर्ट बनाएं, और वो रिपोर्ट आपकी बहुत व्यापक रूप में हो, या आपने कैसे कैसे तैयारी की थी, तैयारी करने में कहां कहां कमियां रह गई, क्या आपको मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हुई, फिर जब आप एग्जाम में गए तो उसके पूरे अनुभव लिखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आपको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, दिमाग में द्वंद्व पैदा हो रहे हैं, निराशा आ रही है, उत्साह का भाव भी आ रहा है, कुछ बहुत सरल प्रश्न थे किसी हड़बड़ी के कारण गलत हो गए, तो इन सारे अनुभवों को आप डिटेल में लिखिए। होने दीजिए 5 पेज 7 पेज 10 पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने साल भर लगा करके तैयारी करके एग्जाम दिया है, 2-3 दिन अगर इसके लिए लगा देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत व्यापक रूप से आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। हो सकता है कि मेरी बात अभी आपको उतनी सही नहीं लग रही हो, लेकिन जब आप फिर से तैयारी शुरू करेंगे तब पाएंगे कि ये जो आपने रिपोर्ट लिखी है ये किस तरीके से आपकी तैयारी के लिए लाइट हाउस का काम कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि एक टॉर्च का काम कर रहा है। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि नहीं इधर से नहीं इधर से, इधर से नहीं इधर से, अब आपको ये करना है, अब आपको इस रास्ते पर चलना है, आपको अपनी इन कमजोरियों से उबरना है, इनसे मुक्ति पानी है, तैयारी करने का आप ये मॉडल अपनाइए, आपको इस विषय को कुछ ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने का आपका ये तरीका होना चाहिए। आप पाएंगे आप अभी उसे नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन मित्रों अगर आप लिख लेंगे और फिर आगे अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्थित रूप से तैयारी करें, एट्रेंडम तरीके से नहीं कि ठीक है जिसने जो बता दिया वो पढ़ लिया, जो मिल गया वो पढ़ लिया, जब मन में आया तब पढ़ लिया, इस पद्धति को छोड़ करके आप एक साइंटिफिक तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हैं मेरी इस विनम्र सलाह पर थोड़ा सा गौर करें, इस पर ध्यान दे करके और इसे अमल में भी लाएं कि अपनी रिपोर्ट तैयार करें। दूसरी बात, देखिए दोस्तों, ये हार जीत का खेल है। एग्जामिनेशन तो है नहीं जो पास फेल होने पर निर्भर करता है, ये तो सिलेक्शन की डिमांड करता है, राइट। तो पता नहीं किन का सिलेक्शन होगा किन का नहीं होगा, आप उन्हें नहीं जानते। और इनफैक्ट सच पूछिए तो बहुत से ऐसे भी हैं कि जिनका सिलेक्शन होना होगा वो खुद भी नहीं जानते हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन जिनको भी थोड़ी सी उम्मीद है सेलेक्ट होने की, उन्हें मेंस की तैयारी के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। यानी कि ये नहीं कि ठीक है 5-10 दिन आराम करते हैं और फिर मेंस की तैयारी करेंगे, नॉट एट ऑल। मेंस की तैयारी करने में आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि जो सही एग्जाम है इनफैक्ट वो मेंस ही है। नो डाउट कि बिना प्री क्वालिफाई किए आप मेंस में नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेंस का जो कंपटीशन है वो ज्यादा टफ कंपटीशन है, क्योंकि वो सबका सब डिस्क्रिप्टिव है, वो ज्यादा चैलेंजिंग है। इसलिए आपको अपना वक्त बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहिए और मेंस की तैयारी में पूरे मनोयोग के साथ और एक सिस्टम बना करके लग जाना चाहिए। सिस्टम बनाने का मतलब है कि आप देखिए कि आपकी तैयारी कहां तक हो चुकी है, किस तरह की तैयारी की आपको रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, एक दिन में आप कितने घंटे देने की स्थिति में हैं, और जो आपका बचा हुआ हिस्सा है जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो कितने घंटों की कितने दिनों की डिमांड कर रहा है। उस तरह से पूरा आपका टाइम टेबल आपके दिमाग में मौजूद होना चाहिए। और यदि आप सर्विस में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं इसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है, तो आप कुछ दिनों की छुट्टी लेने में बिल्कुल हिचक न दिखाएं। आपको पूरे मनोयोग के साथ इसकी तैयारी में अपने आप को लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं पूजा यादव, कृष्णानंद कुशवाहा, पुरुषोत्तम साहू, चंदन किशोर पटना बिहार से, गौरव मेघवाल उदयपुर से, योगिता नई दिल्ली से, और देवव्रत दुबे। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।